आस्तिक की गाड़ी सीधे उसके फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। उसने ग्रीन माउंटेन का ये घर अपने और अमायरा के लिए बनवाया था, पर अब ये घर उसका और अरुणा का एक छोटा सा संसार बन गया था। आस्तिक ने सोचा था कि वो इसी घर में शिफ्ट हो जाएगा और अरुणिमा के साथ यहीं अपनी दुनिया बसाएगा। ये घर शहर से बहुत दूर और शांत वातावरण में था। वो अरुणिमा को उस शोरगुल भरी दुनिया में नहीं रखना चाहता था जहां हर दिन एक नई मुसीबत उनका इंतजार करती। ऊपर से इस घर पर आस्तिक ने खास किस्म के सिक्योरिटी सिस्टम भी लगवाए थे, इसीलिए वो अरुणिमा को यहीं रखने की सोच रहा था। लेकिन जब आस्तिक और अरुणिमा पर यहां हमले होने शुरू हुए तो वो एकदम हैरान रह गया। इस घर के बारे में बहुत मुश्किल से ही लोगों को पता था और ये भी अभी कुछ ही समय पहले लिया गया था। ऐसे में यहाँ के बारे में किसे जानकारी हो सकती थी, और वो भी उसका इतना बड़ा दुश्मन जो शायद उसके आसपास ही मौजूद था। आस्तिक इन्हीं बातों को सोच सोचकर इतने दिनों से परेशान था, पर अब जब उसे ये पता चल गया कि इन सब के पीछे लावण्या का हाथ है तो वो एकदम बौखला गया। लावण्या उसके साथ हाई स्कूल के दिनों से थी और आस्तिक जानता था कि लावण्या उसके लिए पूरी तरह से पागल थी। यहाँ तक कि हाई स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए थे। यही बात थी जो आस्तिक को लावण्या में पसंद थी। वो किसी भी रिश्ते में बंधन नहीं चाहती थी। वो एक आज़ाद ख्यालों की लड़की थी और कभी भी किसी एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने की कल्पना नहीं करती थी। वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती थी और यही बात आस्तिक को उसमें दिलचस्प लगती थी। उसे पता था कि अगर उसकी जिंदगी में अमायरा नहीं आती तो शायद लावण्या का भी चांस हो सकता था, लेकिन वैसे भी उन दोनों को एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहकर भी कोई खास फायदा नहीं था, क्योंकि जो कुछ वे बिना किसी रिश्ते के कर रहे थे वही सब रिश्ते में रहकर भी करते थे। इसी वजह से जब आस्तिक को सरोगेट मदर की जरूरत पड़ी तो उसने ऐसा किसी को चुनना चाहा जो उसके काम भी आ जाए और उस पर बोझ भी न बने, और उस वक्त उसे एक ही नाम याद आया, लावण्या। ऊपर से जब उसने लावण्या के साथ वो रिश्ता खत्म किया तो लावण्या बिना कुछ कहे चली गई। ये बात आस्तिक को थोड़ी अजीब जरूर लगी थी, लेकिन उस समय उसका सारा ध्यान अरुणिमा पर था, इसीलिए उसने इस पर ज्यादा सोच विचार नहीं किया। लेकिन अब जब इन सब के बीच लावण्या का नाम सामने आ रहा है, मुंबई के बाहर से जो मैसेज भेजे जा रहे हैं वे लावण्या के नाम पर रजिस्टर्ड हैं और ये सारे मैसेज आस्तिक के घर पर किए जा रहे हैं। अब उसे बस उस शख्स को ढूंढना है जो उसके घर के भीतर है और लावण्या से मिला हुआ है। ऐसा तो नहीं कि ये सब एक दिन की प्लानिंग थी। वैसे भी इन सब की तैयारी तभी से शुरू हो गई थी जब से आस्तिक और अरुणिमा की शादी हुई थी। इसका मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आस्तिक को जानना बाकी था। आस्तिक को यकीन था कि वो उस शख्स के बारे में भी जल्दी ही पता कर लेगा। फिलहाल उसने अपने आदमियों को बैंगलोर में जानकारी दे दी थी कि लावण्या को ढूंढ निकाला जाए। लावण्या जहां रहती थी वो वहां नहीं थी। उसने हाल ही में वो घर भी बेच दिया था। शायद उसे शक हो गया था कि आस्तिक उसकी तलाश में है, इसीलिए वो वहां से गायब हो गई थी। लेकिन वो अपने घर से गायब हो सकती थी, आस्तिक की पहुंच से नहीं। आस्तिक उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और इस बात का पता जरूर करेगा कि आखिर किसके कहने पर उसने इतना बड़ा खेल रचा है और क्यों वो उसे और अरुणिमा को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। आस्तिक को यह भी मालूम था कि लावण्या सिर्फ एक मोहरा है। इस पूरे गेम के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और है, क्योंकि कोई भी ऐसे आस्तिक के घर की पार्टी में पहुंचकर उसके कमरे तक जाकर उसकी बीवी के साथ इस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दे, ये काम लावण्या का नहीं हो सकता था। वो चाहे बाहर से जितनी भी मजबूत दिखे, अंदर से वो बहुत डरपोक थी और ऐसे काम करने के लिए उसके पास वो ताकत या पहुंच नहीं थी। इसलिए फिलहाल आस्तिक सिर्फ लावण्या तक पहुंचना चाहता था, बाकी सारी बातें वो उसी से मिलकर ही पता करेगा। आस्तिक गाड़ी से उतरकर सीधे घर के अंदर गया। इस वक्त उसे अरुणिमा की बहुत तलब हो रही थी। वो अरुणिमा की खुशबू को महसूस करना चाहता था, उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था। वो उसकी तड़प में बेचैन हो रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अरुणिमा को ढूंढने लगा। लेकिन अरुणिमा हॉल में नहीं थी, इसलिए वो तेज कदमों से किचन की तरफ भागा। किचन भी खाली था, अरुणिमा वहां भी नहीं थी। अरुणिमा को ना पाकर आस्तिक की बेचैनी और बढ़ गई थी। वो वहां से सीधे अरुणिमा के कमरे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है तो उसका दिल और घबरा गया। इसके बाद वो ऊपर टेरेस की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अरुणिमा अक्सर शाम को वहां जाया करती थी। लेकिन इससे पहले कि वो टेरेस की तरफ कदम बढ़ाता, उसके कदम अपने आप रुक गए और उसकी नजर अपने कमरे की ओर मुड़ गई। उसका कमरा खुला हुआ था और अरुणिमा ठीक दरवाजे के सामने खड़ी थी, पीठ दरवाजे की ओर। उसे अपने कमरे में देखकर आस्तिक ने राहत की सांस ली। वो धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा और वहीं रुककर उसे देखने लगा। अरुणिमा किसी गहरे सोच में थी। उसने बेबी पिंक रंग की नाइटी पहन रखी थी और बाल खुले हुए थे। इस रंग में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका बदन पूरी तरह से निखर कर सामने आ रहा था। आस्तिक की बेचैनी और बढ़ गई थी। शायद अरुणिमा गहरे विचारों में डूबी हुई थी, इसीलिए उसे आस्तिक की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। आस्तिक का गला सूख रहा था। उसके सामने खड़ी अरुणिमा अपने दांतों तले अपनी छोटी उंगली दबाए शायद कुछ सोच रही थी और हल्के हल्के अपने बदन को इधर उधर झुका रही थी। उसका ये अंदाज देखकर आस्तिक और भी ज्यादा दीवाना हो गया। वो धीरे से कमरे में आया और चुपचाप पीछे से अरुणिमा को अपनी बाहों में भर लिया। अरुणिमा एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर समझ गई कि ये आस्तिक है। आस्तिक ने एक हाथ से उसे अपनी बाहों में लपेट लिया और दूसरे हाथ से उसके बालों को एक ओर करके उसके गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। अरुणिमा कांपी और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने दोनों हाथ आस्तिक के हाथ पर रख दिए जो उसकी कमर पर थे और फिर धीरे से बोली, आस्तिक मुझे तुमसे बात करनी है। हूँ, कहते हुए आस्तिक उसके कानों को चूम रहा था और गालों पर अपने होंठ फिरा रहा था। अरुणिमा का बदन जैसे करंट की लहर से दौड़ गया हो, लेकिन फिर भी उसने धीरे से सांस संभालते हुए कहा, आस्तिक प्लीज मेरी बात तो सुनो, ये बहुत जरूरी है। अभी नहीं, अभी मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत जरूरी है, कहते हुए आस्तिक ने अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। उसने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे करीब खींच लिया और फिर उसकी गर्दन पर फिर से किस करने लगा। अरुणिमा ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दोनों हाथ आस्तिक के कंधों पर थे और वो हल्के से उन्हें दबा रही थी। वो बोली, मैं जो कहने वाली हूँ वो बहुत जरूरी है, तुम्हें सुनना ही होगा। लेकिन आस्तिक इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। बहुत दिनों से वो अरुणिमा से दूर था और अब वो तड़प बेकाबू हो चुकी थी। उसने झटके से अरुणिमा को अपनी गोद में उठा लिया। अरुणिमा ने हैरानी से बड़ी आंखों से उसे देखा तो आस्तिक मुस्कुराते हुए उसे बेड तक ले आया। वो उसे ऐसे धीरे से बेड पर रखता है जैसे कोई नाजुक फूल हो। आस्तिक अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अरुणिमा समझ गई थी कि अगर आस्तिक अब शुरू हो गया तो शायद सुबह से पहले रुकेगा नहीं। उसने जल्दी से उठने की कोशिश करते हुए कहा, आस्तिक अभी नहीं, पहले मैं जो कह रही हूँ मुझे वो कह लेने दो। आस्तिक उसके मुंह पर झुकते हुए उसकी नाइटी की डोरी खींचते हुए बोला, कह लेना, लेकिन पहले मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो कर लेने दो।